आज हम सबके बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिलु बहन जी, जो हम सबको ज्ञान रत्नों से सहज शब्दों में लाभान्वित करेंगे, उसका सूक्ष्म परिचय देती हूँ। आप राज्य की वरिष्ठ परीक्षिकाएं, जिसमें अनेक मनुष्य आत्मा जीवन जीने ज्ञान रत्न धारण कर जीवन को सुख शांतिमय अनुभव करते हैं। आप 1976 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में राज्यों के प्रशिक्षण का कार्यभार संभाल रही हैं। आप 1959 में 11 वर्ष की आयु में इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ राज्यों का अभ्यास भी करते रहे। आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1969 में रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान विषय लेकर बीएससी ऑनर्स डिग्री प्राप्त की और तब से आप इस विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हो। आपने बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। आपके प्रवचन जी टीवी, सोनी टीवी, ईटीसी जैसे अनेक चैनलों में प्रसारित होते हैं। वर्तमान संस्कार तथा आस्था चैनल पर आपके प्रवचन प्रसारित होते हैं। आपने अमेरिका, लंदन, यूरोप, अफ्रीका ऐसे अनेक देशों में सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन ऐसे प्रवचनों द्वारा अनेक आत्माओं ज्ञान रत्नों से सजाए हैं और आज भी हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिलु बहन जी। ओम शांति।
ओम शांति। हम निवेदन करेंगे आप सभी से, आप भी साथ साथ कहेंगे ओम शांति। एक विश्व परिवार लाने में कलाकारों का योगदान, इस विषय को लेकर इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी कलाकारों एवं कला से संबंधित भाई बहनों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कला से संबंधित बहुत सारे विषयों पर आप ज्ञान चर्चा तो सुनेंगे ही, लेकिन जो मेडिटेशन सत्र हैं वे भी साथ साथ चलते रहेंगे सुबह शाम। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी वास्तव में एक बहुत बड़ी कला है, जिसको हम कहते हैं जीवन जीने की कला। कई प्रकार की कलाएं होती है, नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला, कई कलाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कला जिसमें वास्तव में ये सारी कलाएं आ जाती है वो है जीवन जीने की कला। जीवन जीना भी कलामय हो जाए। वैसे तो जीवन तो हम सभी जीते हैं, जो श्वास लेते हैं वो जीवन जीते हैं, लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं? अगर जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफें हैं, विघ्न है, समस्याएं हैं, कई बंधन है, रुकावटें हैं, दुख, शोक, लड़ाई, झगड़ा, हिंसा, मारामारी, झगड़े आदि आदि, ये सब कुछ है जीवन के अंदर, तो जीवन तो वरदान नहीं है, वो अभिशाप है। वरना जीवन तो वास्तव में एक वरदान होना चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा कि हीरा अमोलक जीवन है ये, परंतु उस हीरे समान जीवन को हम अगर दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा में बिता रहे हैं तो वो जीवन कौड़ी तुल्य है। तो आज का जीवन हीरे समान जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे हैं या कौड़ी तुल्य जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे हैं, ये हरेक अपने आप से पूछे। तो ये जीवन हीरे तुल्य कब बनता है, या भगवान की ये देन है ये मानव जीवन, तो ये वरदान के रूप में भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, वो कैसे महसूस होगा या कैसे कहेंगे कि ये जीवन हीरे तुल्य है, जब जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, दया हो, विवेक हो, अर्थात जीवन में अगर सद्गुण हुए हैं तो ये जीवन वरदान है, और अगर जीवन में सारी नकारात्मक शक्तियां हैं तो जीवन अभिशाप है। तो जीवन जीने की कला अर्थात जिस जीवन में हम सुख शांति की भी कला अनुभव करें, वैसे देखा जाए मनुष्य रास्ते पर चलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, दो टांगों से हम चलते हैं, जानवर भी चलते हैं, पक्षी भी चलते हैं, कोई दो टांग से कोई चार टांग से चलते हैं, टांगे हैं चलने के लिए, तो चलना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर कोई मनुष्य एक रस्सी पर चले ये एक बड़ी बात हो जाएगी। वैसे चलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर रस्सी पर वो चलता है वो एक कला मानी जाएगी, क्योंकि कितना उसको संतुलन बनाए रखना पड़ता है, कितना उसे अभ्यास चाहिए, कितनी उसके लिए एकाग्रता चाहिए, कितना उसके लिए लक्ष्य पक्का चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। अर्थात चलते समय ये सारी बातें हैं तो वो कला है। कई तो रास्ते चलते भी गिर जाते हैं, कहेंगे चलना ये क्या हुआ, देखा नहीं क्या। तो कोई रास्ते चलते भी गिर जाए और कोई रस्सी पर भी न गिरे, अंतर है कि नहीं, चलते दोनों ही हैं। एक बच्चा के बच्चे को पेंसिल हाथ में दी जाए और वो पेंसिल लेकर क्या करेगा, लकीरें ही खींचेगा, अभी ABCD भी नहीं आया है लिखना तो लकीरें ही खींचेगा, पेंसिल से कोई लकीरें ही खींचेगा बिना मतलब के, कोई लक्ष्य नहीं। परंतु वही पेंसिल एक आर्टिस्ट के हाथ में आ जाए तो उसी पेंसिल से वो चित्र बना देगा, वो भी तो लकीरें ही तो खींच रहा है ना, आर्टिस्ट भी क्या कर रहा है, लकीरें ही तो खींच रहा है ना, पर लकीरें खींचते खींचते चित्र बना देता है, तो वो कला है। कला अर्थात जिसमें कोई लक्ष्य हो, कुछ उसके साथ कुछ ध्येय जुड़ा हुआ हो, क्यों कर रहे हैं, क्या इससे प्राप्ति होगी। वैसे कोई दो टांगों से नाचता रहे कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ पैर ऐसे चलाता रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैर चलाते, हाथ चलाते, गर्दन चलाते एक नृत्य हो जाए जो सुर के साथ मिल जाए, संगीत के साथ, वो कला है। और फिर कला इसीलिए भी है क्योंकि उससे औरों को सुख मिलता है, उस कला में कुछ ज्ञान समाया हुआ है, तो वो कला में और भी जैसे सोने में सुहाग का रूप बन जाता है। तो इसी प्रकार हम देखें कि जीवन भी एक कला है, और वो कला तब आ जाए जब हमारे अंदर योग की कला आ जाए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की कला सिखाई जाती है, जो वास्तव में जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। परंतु आज बड़े खेद से कहना पड़ता है कि इस योग के नाम पर आज जो कुछ भी बताया जाता है वो असली योग से हम बहुत परे जा रहे हैं, क्योंकि जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में योग के कई स्वरूपों का वर्णन है, एक एक चैप्टर योग का अलग चैप्टर है, अलग योग से संबंधित एक अलग अलग शब्द है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, सहज योग, योग के अलग स्वरूप बताए हैं, और वो सब स्वरूप हमारे जीवन से संबंधित हैं। लेकिन आज लोग योग शब्द का एक अपभ्रंश करके उसको योगा कह दिया, और योगा का अर्थ क्या समझ लिया, कुछ शरीर के आसन करना, जिसे योगासन कहते हैं, और योगा स्कूल्स के नाम से कई स्कूल चारों ओर सीखे खुले गए हैं, जहां कई प्रकार के आसनों का ही प्रशिक्षण मिलता है, और उसी को ही लोग योग समझ बैठे हैं। और कई बुजुर्ग लोग यही सोच करके उससे घबराते हैं, कहते हैं अभी हम बूढ़े हो गए, अभी हम ये सब आसन कहाँ कर सकेंगे, जवान होते तो कुछ करते हैं, जवानी में ये सब होता है, बुढ़ापे में कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए, तो इसलिए नहीं, ये जवानों के लिए ठीक है योगा वोगा, हमारे लिए नहीं है। और जब योग का एक स्पिरिचुअल भाव बुद्धि में आता है तो कई समझते हैं कि योग तो केवल योगी लोग ही करते हैं, और योगी की तुलना एक सन्यासी से कर ली है, कि जो सन्यासी होते वही योगी होते हैं, वही योग में माहिर होते हैं। और कई जवान इसलिए घबराते, सोचते अभी तो हम जवान हैं, अभी थोड़ी हमें सन्यासी बनना है, अभी तो दुनिया देखी कहाँ है, ये सब सन्यास करके जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी, हमें तो संसार में रहना है, इसलिए योगी वोगी हम नहीं है, ये योग वोग हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन को भगवान ने यही कहा, हे अर्जुन, इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, अपने मन को मेरे में लगाओ, तो अर्जुन ने यही शिकायत की, ये मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम होके दौड़ता ही रहता है, इस मन को वश करना तो बड़ा मुश्किल है। तो अर्जुन को भगवान ने दो शब्द कहे जिससे लोग समझते हैं कि ये तो शायद केवल योगी और सन्यासी जो गुफाओं कंदराओं में रहते हैं उनके लिए ही है, क्योंकि भगवान ने कहा कि वैराग्य और अभ्यास, इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो मन को मेरे में लगाने के लिए वैराग्य और अभ्यास चाहिए, और यही योग है। तो जब वैराग्य शब्द सुना तो लोगों के मन में, भाई वैराग वैराग हमारे लिए थोड़ी है, हम तो दुनियादारी में रहते हैं, वैरागी थोड़ी है, हम सन्यासी नहीं है। परंतु योग का सही अर्थ ही भूल गए, क्योंकि कहीं भी गीता हमें सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं देती, संसार को कर्तव्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहता भगवान, लेकिन इतना जरूर कहता है कि संसार में रहो, अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाओ, परंतु जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी अलिप्त रहता है, ऐसा अपना जीवन बनाओ, स्थित प्रज्ञ अवस्था बने, संसार में रहो पर संसार आपके अंदर न रहे, ये योग की सही परिभाषा है, जो जीवन जीने की कला है। फंसो नहीं, छोड़ो भी नहीं, तो फंसना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, ये कला है। फंस गए तो कला कहाँ हुई, गिर गए रस्सी से तो कला कहाँ हुई, नृत्य करते करते फिसल गए तो कला कहाँ हुई, है ना? इतना बैलेंस रखते हैं, क्या क्या करते हैं, कला जो कार कलाकार इतने कितने घड़े रखते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये बैलेंस है ना। तो जीवन कैसा हम जिए ये हमें योग सिखाता है। और योग शब्द की जो परिभाषा है वास्तव में कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। योग शब्द कहां से आरंभ हुआ? संस्कृत के युज शब्द से ये निकला है शब्द योग। संस्कृत का युज शब्द है एक, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहते हैं। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, है ना, योग और वियोग। तो वियोग शब्द का अर्थ क्या है? दूर जाना, अलग होना। तो जैसे वियोग का अर्थ है दूर जाना, अलग होना, तो उसकी भेंट में योग का अर्थ है मिलना। अब ये किसी भी प्रकार का मिलन ये योग है। हम कई रूपों से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्ति मिल करके काम करते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? सहयोग, है ना, वो भी योग है। मिल करके करना ये सहयोग है। एक प्रयोगशाला में दो वस्तुओं को जोड़ करके एक तीसरी चीज बनाते हैं, वो प्रयोग करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उसमें भी योग शब्द आता है। हम कोई बात सोचते हैं और उसी वक्त वो बात हो जाती है, हो गई, सोचा हो गई, तो कहेंगे क्या संयोग है, है ना, उसमें भी कौन सा शब्द यूज करते हैं? संयोग। तो संयोग, सहयोग, प्रयोग, सब में योग शब्द आता है। किसी कुमारी को किसी कुमार से विवाह कराना है, शादी करनी है, तो माता पिता उसमें भी योग देखते हैं। दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी को दिखाते, कहते जरा देखो योग है, है ना, योग शब्द ही तो बोलते हैं। योग माना उनकी कुंडली मिलती है, मैच होता है, तो योग माना मिलन। किस कोई व्यक्ति किसी को बहुत याद करता है और मान लो वो सामने पहुंच गया, याद किया और वो आ गया, मैं हम अनाया शब्द निकल रहा, अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको मैंने याद किया और आप आ गए, तो याद भी एक योग है क्योंकि मन की तार जुड़ गई। तो योग शब्द कोई लंबा चौड़ा अर्थ का नहीं है, कोई शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं है, ये तो आम कदम कदम पर अनुभव करने की चीज है। तो कहीं भी कोई भी लिंक है, जॉइंट है, यूनियन है, मीटिंग है, रिमेम्बरेंस, कोई याद है, कोई संबंध है, कहां कम्युनियन है, कम्युनिकेशन है, जिसमें कुछ मिलन का अनुभव होता है, वो योग है। परंतु इसको हम तीन स्तर पर देखेंगे। एक स्तर है भौतिक, जिसमें वस्तुओं का जोड़ है। दूसरा स्तर है मानसिक, जिसमें मन से मिलन है, चाहे वो वस्तु से मिलन है, व्यक्ति से मिलन है, किसी वैभव से मिलन है, हम जिसको भी मन से याद करते हैं उनसे मिलन होता है, ये मन की तार जुड़ जाती है, वो भी एक मिलन है। पर जो तीसरा स्तर है वो आध्यात्मिक स्तर है, हम उस स्तर को समझेंगे जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये सबसे श्रेष्ठ मिलन है, इसीलिए यही योग का सर्वोत्तम स्वरूप है। तो भौतिक रूप से मिलन कोई को समझना मुश्किल नहीं है, दो चीजों को जोड़ते हैं, दूध में चीनी जोड़ी मिलाई, हाँ, चम्मच दूध, चम्मच चीनी का दूध में मिलाया, तो क्या हो जाता है? चीनी का गुण दूध में आ जाएगा और दूध मीठा हो जाएगा, तो भाई ये मीठा दूध हो गया, दूध प्लस चीनी इक्वल टू मीठा दूध, है ना। हम गणित में हिसाब करते हैं, अरिथमेटिक में, तो चीजों को जोड़ते हैं, तो आखिर में क्या लिखते हैं? कुल योग, है ना, क्या लिखते हैं नीचे से? टोटल सम। तो हिंदी में क्या कहते हैं? कुल योग, तो वो भी योग है। बिजली घर से योग होता है तो बिजली हमको प्राप्त होती है। रेडियो स्टेशन से ट्यूनिंग करते हैं तो रेडियो की आवाज स्टेशन से जाती है, वो हमारे रेडियो रिसीवर पर सुनाई देता है। तो ये एक भौतिक रूप का योग है, क्योंकि कुछ उसमें ऊर्जा काम करती है फिजिकल, जिसके आधार से वो मिलन का अनुभव होता है और उसका हम अनुभव करते हैं। दूर बैठे हजारों मील की दूरी पर रेडियो स्टेशन बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका हम यहाँ सुन सकते हैं, सीएनएन कहाँ से आता होगा टीवी। तो ये सभी ये फिजिकल एनर्जीज है जो इस साकार जगत में है, जिसको हम कैच करते हैं और हम घर बैठे सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब इसको अब दूसरा रूप है मानसिक। मन से कोई बात हम याद करते हैं, अब वो बात हो सकता है कोई घटना घटी, बड़ी दुखद घटना, आज से 20 साल पहले कोई इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, बहुत उसमें दुख हुआ, और आज भी उस घटना को आप याद करेंगे तो क्या होगा, एकदम कांपना चालू करेंगे, दुख का अनुभव अभी करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी न वो स्थान है, न वो समय है, न वो बात है, न वो सिचुएशन, कुछ भी नहीं है। 20 साल पहले की बात, अभी तो सब कुछ बदल गया उसकी वेद में, लेकिन अब भी अगर वो बात याद करते तो क्या होता है, बाबा मत याद कराओ, मत याद कराओ, मुझे याद मत कराओ, क्योंकि वो दृश्य अभी भी सामने मेरे उपस्थित हो जाता है। उसकी भेंट में आप सुखद कोई घटना है, अभी भी याद करो तो आप मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे, खुशी में आ जाएंगे। तो ये क्या मन से मिलन हो गया उस स्थान से, उस व्यक्ति से, उस घटना से, तो ये भी एक योग है। परंतु अगर हम एक स्पिरिचुअल अर्थ लें, इसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, स्पिरिचुअल स्पिरिट, जिसका आत्मा से संबंध है, परमात्मा से संबंध है। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें स्पिरिचुअल योग, जिस योग से हम सब एक हो जाते हैं, वैसे भी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी बाइंड्स अस ऑल, ब्रिंग्स अस इनटू यूनिटी। आज धर्म के नाम पर लोग सब अलग अलग होते जा रहे हैं, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी जाति तेरी जाति, मेरा देश तेरा देश, हा? मेरा तेरा में बंटते जा रहे हैं और लड़ते झगड़ते रहते, ये मेरा ये तेरा। पर वो आध्यात्मिक शक्ति जो आज मिसिंग लिंक है हर क्षेत्र में, वो अगर हम अनुभव कर लें तो हम सब मिलकर फिर से एक हो सकते हैं। तो यह योग जो आध्यात्मिक प्रकार का योग है, वो सबको मिलाने वाला योग है, उसको हम देखेंगे और उसके आधार से फिर से हम इस संसार को एक बेहतर संसार बना सकेंगे। तो वास्तव में क्या है, राजयोग की जब हम परिभाषा लेते हैं तो ये फिर योग का सर्वोत्तम स्वरूप है। राजयोग अर्थात सभी योगों का राजा, और एक हिसाब से हम योगी सभी हैं, क्योंकि मन से जिसको याद करते उसके साथ हमारा योग है। पर जब ये मन की तार ईश्वर से जुड़ जाती है तो वो राजयोग है। तो राजयोगी कैसे बने वो आपको हम बताएंगे, जो ईश्वर से मन की तार जुड़ जाए। आप कहेंगे हम ईश्वर को तो याद करते ही हैं, जब भी दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई विघ्न समस्या आती है, तो मन ईश्वर की तरफ ही दौड़ता है, हे भगवान, ओ गॉड, हे रक्षक, हे ईश्वर। तो जब मन ईश्वर की तरफ दौड़ता है जरूर, तो प्रश्न उठता है तो फिर ये शिकायत क्यों, कि जब भी हम पूजा पाठ जप तप करने बैठते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, तो ये मन बेलगाम घोड़ा होके भटकता है, दुख के समय तो वही याद आता है, पर हर वक्त जब भी हम बैठे तो मन क्यों नहीं लगता, केवल दुख में हे भगवान कह दिया। तो कबीर का दूसरा दोहा याद आता है, कौन सा है? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, पर जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में भी वो सिमरण रहे तो दुख होगा ही नहीं, क्योंकि मन को ऐसी कंडीशनिंग मिल जाती है योग के द्वारा जो दुख आएगा ही नहीं। जैसे हम एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं तो बाहर की गर्मी का असर होगा ही नहीं, क्योंकि हमने हॉल को कंडीशन कर दिया भाई 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम ये तापमान चाहिए, बाहर भले 48 डिग्री क्यों ना। तो मन को भी हम कंडीशनिंग अगर कर सके तो बाहर के दुख कष्ट पीड़ा ये अनुभव ही नहीं होंगे, और सदा ही उस स्मृति ईश्वर की स्मृति में रह सकेंगे हर कर्म करते हुए। वास्तव में यही राजयोग है, क्योंकि कैसे हम मन को कंडीशनिंग करें यही योग सिखाता है। तो योग अर्थात संबंध और राजयोग अर्थात परमात्मा से संबंध, जो सर्वशक्तिमान से परमात्मा से संबंध हो जाने से इतनी शक्ति मिलती है जो सचमुच हम राजा बन जाते हैं, इसलिए राजयोग है, किंग ऑफ ऑल योगास। किसके राजा? दूसरों के नहीं, दूसरों पर राज्य करने वाले नहीं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, पर खुद को जरूर बदल सकते हैं। तो किसका राजा? पहले अपने इंद्रियों का राजा। आज हम देखते इंद्रियां राजा बन गई है, जहां इंद्रियां खींच के ले जाती है मन वहीं चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस जो शरीर की इंद्रियां हैं, इनमें मन आकर्षित हो जाता है और मन उसके वश हो जाता है। आंखों ने कोई चटपटी चीज देखी, मुख में पानी आ गया, हाथ चला गया, ये रस है ना। वैसे तो कला के क्षेत्र में, गायन में बहुत सारे रस बताए, हास्य रस और ये सब रस बताए, पर ये इंद्रियों का रस और मन उनका गुलाम हो गया है। पर कैसे इन इंद्रियों को हम जीत सकें, मन उनका राजा बने, मन उसको उनको अपने वश में रखे, इंद्रियों को, न कि इंद्रियां मालिक हो जाए। तो कैसे इंद्रियों का राजा बने, फिर उसके बाद मन का भी राजा बने। जो मन में हम सोच देना चाहें वो ही सोचें, जो नहीं सोचना चाहे वो न सोचें। लेकिन आज क्या होता है, जो सोचना चाहते वो मन में आता ही नहीं है, भूल गए, भूल जाते हैं, और जो नहीं सोचना चाहिए वो याद ही करते रहते, भूलते ही, भूल ही नहीं सकते, होता है ना। कई बार कहते क्या था, भूल गया, भूल गया। और कई बातों के लिए आपको कहा जाएगा भाई भूल जाओ, नहीं कैसे भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ। तो कोई बातें जो भूलनी चाहिए वो भूल नहीं सकते, जो याद करनी चाहिए वो याद नहीं आती है। तो देखिए कितने कमजोर हो गए। जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो याद नहीं करना चाहिए वो याद कर लेते। तो मानो फिजिकली इंद्रियों के भी गुलाम हो गए, मन के भी गुलाम हो गए। तो राजा माना इंद्रियों का राजा, मन का राजा, फिर सबके दिलों का राजा, सबका दिल जीत सको। सबका दिल कौन जीत सकता है? जिसके अंदर जीवन के सच्चे मूल्य होंगे वही औरों का दिल जीत सकेगा। और जिसने सबका दिल जीत लिया वो तो विश्व को भी जीत सकता है, क्योंकि बाहुबल से, हथियारों के बल से कोई विश्व को जीत नहीं सका है आज तक, न जीत सकेगा। सिकंदर राजा ने सोचा मैं दुनिया को जीतूं, लड़ाई करके उनका राज्य छीनूं, लेकिन जब वो संसार से गया तो क्या शिक्षा देके गया कि हाथ खाली जाना है, क्योंकि दुनिया को हथियारों के बल से कोई जीत नहीं सका, पर हां योगी सारे संसार को जीत सकता है अपनी योग की शक्ति से। तो योग अर्थात संबंध और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा से आत्मा का मिलन, ये है सच्चा योग। अब उसके लिए आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये समझना पड़े, तब सच्चे योगी बन सको। फिर जो विधि है इस मिलन की, वो विधि भी राजयोग में सबसे ऊंची है। कई समझते ईश्वर तक पहुंचना माना किसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, क्योंकि ईश्वर माना एक पहाड़ की चोटी। अब वहां तक जाने के कई रास्ते हैं, तो भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, परंतु आप कौन सा रास्ता पसंद करेंगे उस चोटी तक पहुंचने के लिए? रास्ते कई होंगे, कठिन वाला, लंबा, बहुत तकलीफों वाला, वो रास्ता थोड़ी चुनेंगे। कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे हा? कौन सा जो सहज हो, शॉर्टकट हो? माउंट आबू आने के भी कई रास्ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ के भी आते हैं लोग, लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना? सीधा गाड़ी में बैठो और पहुंच जाओ बिना मेहनत। तो इसी प्रकार राजयोग वो हमें तरीका बताता है, विधि बताता है उस ईश्वर तक पहुंचने की, सहज विधि, सबसे सरल और रॉयल। और तीसरा जो उसे प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है, क्योंकि कई प्रकार की प्राप्तियों का लक्ष्य होता है इंसान को, धन मिले, मान मिले, इज्जत मिले, ये मिले, वो मिले, लेकिन अंतिम प्राप्ति सबके लिए अंदर में यही आती है, शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, सद्गुण मिले। भगवान से भी हम यही कहते, कई कहते भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं, बस भगवान से प्रार्थना है, बस शांति दो। क्या प्रार्थना करते हैं? शांति दो। और शांति को पाने के लिए मनुष्य जंगलों में जाते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब शांति वास्तव में है क्या चीज? वो तो हमारे गले का ही हार है हमारे पास, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। बस योग यही सिखाता है कि जो आप चाहते हो उसके लिए बाहर मत ढूंढो, वो आपके पास ही है। इसीलिए व्हाट इज मेडिटेशन, विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, मेडिटेशन इज द मेनी मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर जो परफेक्शन है उस परफेक्शन को प्रकट करना ही मेडिटेशन है। कला भी क्या है? वो आपके अंदर ही है, पर वो निहित है, अंतर्निहित है, उसको उजागर करना थ्रू प्रैक्टिस और एकाग्रता से, वो आपके अंदर वाली चीज को बाहर प्रकट करना। तो मेडिटेशन भी एक कला है, उसको हम समझेंगे। तो वास्तव में राजयोग क्या है? एक प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन दैट एनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस टू लाइफ, गिविंग अस अ क्लियर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ एंड द सुप्रीम। अब इसको हम थोड़ा और समझेंगे। जैसे अष्टांग योग में योग के अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, लास्ट में समाधि तक पहुंचे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा से और समाधि, वो अष्टांग योग तक जाते हैं, वो योग के योग का स्वरूप। अब यहां हम कहते हैं राजयोग के अंतर्गत ये आठ योग के अलग अलग स्वरूप आ जाते हैं, ये योग के अलग अलग स्वरूप है। सब गीता के ये शब्द हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, समत्व योग, संन्यास योग, भक्ति योग, ये सब अलग अलग मार्ग नहीं है, सब राजयोग के अंतर्गत ही है। इस योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस जगत में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, क्या संबंध है मेरा उनके साथ, कैसे प्राप्ति होगी उनसे, कैसे मिलना होगा, ये सारे जो ज्ञान की बातें हैं जिसको आध्यात्मिकता हम कहते हैं, वो इस योग में समझाई जाती है, अनुभव की जाती है। फिर इसको हम सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर को कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सारा जो प्रयोग है वो मानसिक है, बौद्धिक है, इट इज ऑल इंटरनल। जैसे कोई हठ योग करते हैं तो हठ योग में, या कई आसन जो करते हैं उन आसनों में, जितने भी प्रकार के आसन हैं उसका यह सारा मानसिक प्रयोग है। जैसे मान लीजिए कोई शीर्षासन करे, सिर नीचे पैर ऊपर, ये भी एक आसन है शीर्षासन। लेकिन राजयोग में हम कहते हैं सिर नीचे पैर ऊपर, ये इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में बड़ा सुंदर शब्द दे सकते हैं, नॉट बैलेंस ऑन हेड, लेकिन बैलेंस ऑफ हेड, बस ऑन को ऑफ कर दो, संतुलन, दिमाग का संतुलन, हर परिस्थिति में संतुलित मन हो, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख में समान रह सको, इसलिए इसको समत्व योग कहा। ये नहीं कि मान मिला तो चढ़ गए, जैसे बलून में हवा भरी तो फूल गया, बड़ा सुंदर दिखा, और सुई डाली तो फुस हो गया, सारी हवा गायब, तो एक सेकंड में खूब खुश और दूसरे सेकंड में रोना शुरू, हाँ ये कोई स्थित प्रज्ञ अवस्था थोड़ी है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में समान रह सको, उनका सेक आपको न लगे, इसीलिए उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए बुद्धि से समझना होगा हर बात को। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, पहले सोचो फिर समझो उचित क्या है अनुचित क्या है, इसलिए बुद्धि योग है, बुद्धि से समझ मिलती है बुद्धि में, और फिर करो। लेकिन जब हम देह के अभिमान में है, अज्ञान है हमको, हम ये जानते ही नहीं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, तो कर्म कर लेते हैं एक्सटेम्पो, बिना सोचे समझे, और कई बार वो गलत होता है। फिर गलत कर लिया तो उसके बाद आंखें खुली, अरे ये तो गलत हो गया, इतना नुकसान हो गया, फिर समझ मिली, फिर समझ के बाद फिर सोचते अभी क्या करें। तो होना क्या चाहिए, सोच समझ कर कर्म करो, पहले सोचो फिर समझो क्या उसका परिणाम हो सकता है, फिर सही है फिर करो। पर कर लिया फिर समझा कि गलत था, फिर सोचते अभी क्या करें, तो उल्टी गाड़ी हो गई, ये रिवर्स हो गया, होना चाहिए सीधा जाए, कैसे जाए, तो रिवर्स चले गए तो कहां मंजिल तक पहुंचेंगे, तो जीवन तो अभिशाप ही बनेगा ना, वरदान कहां बनेगा। इसीलिए बुद्धि योग माना बुद्धि से समझो कि सच सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको पहचानो, और फिर कर्म को भी नहीं छोड़ना है, कर्म करते हुए परमात्मा की याद रहे, पर कर्म के फल की चिंता नहीं, इसको कर्मयोग का, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म पर पूरा अधिकार है, फल ईश्वर पर छोड़ दो, फल की चिंता मत करो, फल अच्छा ही होगा। गलत कर्म किया तो सच बता दो किया मैंने गलत काम, क्योंकि फल तो मिलना ही है, अच्छे का भी मिलना है, पर अच्छा किया तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप मिलेगा, ईश्वर देगा जरूर। नेकी कर दरिया में डाल, बुरा किया तो बताओ, और अच्छा किया तो जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। परंतु आजकल हम क्या करते, अच्छा किया तो दुनिया को बताएंगे, मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और गलत किया तो बताना नहीं, बताना नहीं, छिपाएंगे, दोनों ही उल्टा, अच्छा किया तो बताओ नहीं, बुरा किया तो बताओ, सच बता दो, बहुत सजा से छूट जाएंगे, माफी मांग लो, तो उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसीलिए जीवन क्या बन गया है, अभिशाप बन गया है। तो इसीलिए ये राजयोग के कई स्वरूप है। भक्ति योग माना ईश्वर से सच्चा प्रेम, ये है भक्ति योग। केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, प्रेम हो ईश्वर से। और फिर संन्यास कोई दुनिया का नहीं, संसार का नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, लेकिन बुराइयों का, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकारों का। और फिर समत्व योग, हर परिस्थिति में संतुलित मन बना के रखो, ये हमें योग सिखाता है। और उससे कितने लाभ हमें मिलते हैं ये सारे आप पढ़ सकते हैं। हमारी निर्णय शक्ति हमारे कितने शार्पिन होते हैं, हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, हमारे अंदर विल पावर आती है, शांति आती है, एकाग्रता बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, तभी जीवन जीने की कला आती है। और ये सब जब हमने अनुभव कर लिया तो फिर कई कहते हैं परंतु ये किसके लिए है, हम कहते सबके लिए। इसमें कोई हद न रखें कि ये इतनी एज वाले करे, इतनी धर्म वाले करे, इस जाति वाले करे, नहीं नहीं इस प्रोफेशन वाले करे, सबके लिए। क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं ना, तो इसलिए हरेक के लिए है। केवल हमें यह आना चाहिए हम अंतर आत्मा की आवाज कैसे सुने, वो हमें कला आनी चाहिए, तो फिर ये जीवन जीने की भी कला आ जाएगी। अब हम देखेंगे योगी कौन। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे, आप कौन हैं? तो कोई कहेगा भाई मैं तो इंसान हूं, वो तो हम भी देख रहे हैं इंसान है, दो टांग दो हाथ ये सब है। आप कौन है तो कई समझिए कोई प्रश्न होता है क्या, फिर अपना प्रोफेशन बता देंगे। अब प्रोफेशन तो आप नहीं है ना, ये तो आप जो करते हैं वो प्रोफेशन है, दैट्स व्हाट यू डू, पर आप कौन है? फिर आप जाति बता देंगे, धर्म बता देंगे अपना, या जो देश बता देंगे। भारत से बाहर जाते हैं तो कई पूछेंगे हमसे आप कौन, मैं कहूंगी मैं इंडियन हूं। इंडिया में ये नहीं कहेंगे मैं इंडियन हूं तो हूं मैं, लेकिन बाहर विदेशों में ये कहेंगे। पर ये जो कुछ भी हम बताते हैं अपने लिए, ये सब डूइंग पार्ट है, ये बीइंग पार्ट नहीं है, ये डूइंग पार्ट है। बीइंग पार्ट मैं कौन हूं, जैसे कोई एक्टर कई रोल बजाता है तो एक्टर के अनेक रोल होंगे। एक अमिताभ बच्चन ने कितने रोल बजाए होंगे, कितनी फिल्मों में और कितनी शूटिंग एक ही दिन में करते, अलग अलग फिल्मों की शूटिंग, सुबह को शूटिंग की राजा की और शाम को शूटिंग की फकीर की, ऐसा भी है ना, शहनशाह की भी और कूली की भी है ना, दोनों ही शूटिंग की, तो शहनशाह भी बन गया और कूली भी बन गया। पर ये तो उसके रोल थे, अभिनय करना ये तो अलग चीज है। सुबह से लेकर आप रात्रि तक कई अभिनय करते हो, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध है, तो अलग अलग आपका रोल है। पर आप कौन है, आइडेंटिटी आपकी क्या है, और वो आइडेंटिटी, वो आप, आपका व्यक्तित्व जो सदा ही है। रोल अलग चीज है, जो हर वक्त है, केवल इस शरीर में ही नहीं, इसके पहले भी और इसके बाद भी। वो आप कौन है, जो ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। ईश्वर के सामने आप कौन हैं, क्योंकि वो तो स्थिर है ना, ये तो रोल बदलते रहते हैं इस संसार में। ईश्वर के आगे आप कौन हैं, जो सदा ही है। तो फिर कई लोग दूसरा जवाब देते हैं, क्योंकि ईश्वर के आगे फिर अपना परिचय दूसरे रूप में देते हैं। ईश्वर के आगे नहीं, हम मंदिर में जाके ये नहीं कहेंगे मैं सेठ हूं, मैं धनवान हूं, मैं होशियार हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ये सब भगवान के आगे परिचय ऐसा नहीं देते। भगवान के आगे फिर क्या परिचय देते हैं हम अपना, मैं मूर्ख हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं गंदा हूं, बंदा हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं, आदि आदि इतने हीन शब्द भगवान के आगे अपने बारे में बताते हैं। और दुनिया में तो मेरे जैसा कोई नहीं, और भगवान के आगे मेरे जैसा नीच कमीना कोई नहीं, पापी कोई नहीं, क्योंकि भगवान किसी और को तो बताएगा नहीं, है ना, वो अपने पास ही रखेगा। तो इसीलिए भगवान के आगे तो हम कुछ और बताते, दुनिया के आगे कुछ और, तो हम फिर हम कौन है? क्योंकि ये तो नहीं कि दुनिया के आगे कुछ और भगवान के आगे कुछ और, हम जो हैं वही है ना, चाहे भगवान के आगे हो चाहे दुनिया के आगे हो, हम थोड़ी बदल गए। आइडेंटिटी तो मेरी वही है, तो वो मैं कौन हूं? तो वास्तव में ये जो दो प्रकार की हम कॉम्प्लेक्सिटीज बताते हैं ना, दुनिया के आगे बिल्कुल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और भगवान के आगे एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? तो वास्तव में ज्ञान है कि जब हम कहते हैं मैं मनुष्य हूं, इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग जो शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन माना ह्यूमस, ये शरीर, ये मिट्टी का बना हुआ, पंच तत्वों का बना हुआ, पर जो बीइंग पार्ट है वो है वास्तव में मैं। और ये बीइंग पार्ट अगर निकल गया तो ह्यूमन तो कॉप्स है ना, डेड बॉडी है, तो वो मैं बीइंग पार्ट कौन हूं? जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर भी है तो सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर वो बाहर से आया और उसमें डाला, सॉफ्टवेयर के बिना चाहे कितना भी हार्डवेयर आपका बहुत ही पावरफुल हो, मेमोरी आपकी वो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क ये बहुत बड़ा है, पर सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो किस काम का वो का हार्ड, वो आपका कंप्यूटर। बहुत बड़ा आपने ये ला दिया टीवी, बहुत बड़ी, पर उसमें कोई कनेक्शन जोड़ा ही नहीं तो फायदा क्या, वो तो बुद्धू बॉक्स है। तो ये शरीर तो एक रथ की तरह है, पर इसमें रथी कौन है? इसीलिए जब रथी निकल गया तो शरीर को क्या कहते, अर्थी, है ना? कोई व्यक्ति मर गया तो उसको डेड बॉडी को रखेंगे, पर ये अभी अर्थी है, ये नहीं फलाना सोया हुआ, नहीं, अर्थी है उनकी। अ प्लस रथी, रथी चला गया, नो रथी, अ माना नहीं, तो रथी चला गया तो बाकी ये अर्थी है। तो रथी कौन है? रथ और रथी, तो रथ है ये शरीर, तो रथी कौन है? आत्मा। और आत्मा परमात्मा से आई है, शरीर के लिए क्या कहेंगे, मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा के लिए क्या कहेंगे, भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर जाना है। वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, शरीर तो परिवर्तनशील है। तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती तब जीव आत्मा कहते हैं, परंतु आत्मा और शरीर में भी कई ये नहीं समझ पाते हैं कि फिर आत्मा क्या चीज है। शरीर को तो समझा, शरीर तो नॉन, शरीर तो फिजिकल है, मॉर्टल है, टेम्पररी है, कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सब समझा, पर आत्मा क्या चीज है? फिर कहेंगे आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वास्तव में वो मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब उसको समझना माना खुद को समझना। अब उसको हम कैसे समझे? क्योंकि जब तक हमने ये अंतर नहीं समझा तब तक हम उसका अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठकर ये तो नहीं कहेगा मैं गाड़ी हूं, ऐसे कहेगा क्या? वो तो ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला मालिक है, रथवान है, रथी है, वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी बोलेगी नहीं, रथी तो बोलेगा, गाड़ी चलाने वाला। हीरा है और एक डिब्बी में रखा हुआ है, डिब्बी की वैल्यू ही तब है जब हीरा हो ना, अगर हीरा है ही नहीं तो डिब्बी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो क्या फर्क पड़ता। हाँ, दोनों का अपना महत्व जरूर है, पर दोनों के बीच में से मैं कौन हूं? दोनों तो नहीं हूं ना, एक झोपड़ी में दिया जल रहा है तो झोपड़ी अलग चीज है, दिया अलग चीज है। एक मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति नहीं तो मंदिर की चार दीवारें किस काम की। मूर्ति का महत्व है, मंदिर का अपना महत्व है, परंतु जो दोनों में मैं हूं वो समझना है, मैं कौन। तो जैसे ही मैंने ये मैं को समझा तो फिर आता है कि इस मैं को हमें अनुभव कैसे करना है। एक एक्टर मंच पर आता है ड्रेस पहनकर, तो ये थोड़ी है कि ड्रेस जो पहनी वो सचमुच वही हो गया, वो तो मंच की चीज है। मंच पर जो ड्रेस पहनी वो मंच का पार्ट पूरा हुआ, एक्टिंग पूरी हुई तो ड्रेस उतारेगा। तो शेक्सपियर ने क्या कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो एक्टर कौन है, रोल तो चलो बजाया, उसकी आइडेंटिटी को समझना माना आत्मा को समझना, माना खुद को समझना। अब कई कहते ठीक है आत्मा भी है शरीर भी है, तो जब हम आप उनसे पूछते आप कौन है, तो फिर कहेंगे कि हाँ मेरे अंदर एक आत्मा है, या फिर कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। दोनों वाक्यों में अंतर है ना। और तीसरा वाक्य भी है कि आई एम अ सोल इन माई बॉडी, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। अब तीनों में से सही वाक्य कौन सा होगा, मैं और मेरा में तो अंतर है ना। अब मैं बोल रही हूं, माइक्रोफोन अलग चीज है, मैं थोड़ी माइक्रोफोन हूं। तो शरीर माध्यम है, साधन है, पर साधक कौन है, ये देखने वाली सुनने वाली बोलने वाली वो शक्ति कौन है। ये इंद्रियां तो साधन है, वो मैं आत्मा हूं। तो कौन सा वाक्य सही होगा, मैं कौन, पहला दूसरा या तीसरा है? तीसरा, क्योंकि पहला है आई हैव अ सोल इन मी, मेरे अंदर एक आत्मा है। अब ये क्या शरीर बोलेगा क्या, मेरे अंदर एक आत्मा है, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर बोलेगा अभी मेरे अंदर आत्मा नहीं है, या कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, तो क्या मैं कोई तीसरी चीज हूं क्या। दो ही चीज है, शरीर आत्मा, ह्यूमन और बीइंग, जड़ और चेतन। तो इसीलिए मैं एक आत्मा हूं जो चेतन सत्ता इस शरीर के भीतर हूं। अब क्या है आत्मा का स्वरूप, कई कहते हैं अगर आत्मा है तो शरीर में दिखाई क्यों नहीं देती है। अब दिखाई कैसे देगी, ये आंखें तो चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु चर्म चीजों को यानी प्रकृति की चीजों को ही देखेंगे। आत्मा प्राकृतिक है नहीं, इट्स मेटाफिजिकल, अबव फिजिकल। तो ये फिजिकल आंखें कैसे आत्मा को देगी, कोई शरीर मनुष्य मरता है आत्मा निकल गई, डेड बॉडी हो गया, पर आत्मा दिखाई तो देती नहीं क्योंकि आत्मा को ये आंखें नहीं देख सकती है। पर आत्मा का अनुभव जरूर होता है, कहां है आत्मा शरीर के अंदर इसको भी समझना है। आत्मा की क्या क्वालिटीज है, आत्मा क्या है, भले हम कहते जलती नहीं कटती नहीं सूखती नहीं, पर वो क्या चीज है जो जलती नहीं कटती नहीं सूखती नहीं, क्या चीज है, क्या है आत्मा की डेफिनेशन, क्या देंगे उसका स्वरूप क्या है। तो एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, ये है आत्मा की पहचान, बहुत सूक्ष्म ज्योति है। ये आंखों से देखी नहीं जा सकती क्योंकि ये आंखें तो फिजिकल ज्योति को देखेगी, वो ज्योति इन आंखों से नहीं देखी जाएगी। और उस ज्योति में तीन शक्तियां हैं जो आत्मा की चेतनता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रोग्राम्स होते हैं। आत्मा की चेतनता तीन शक्तियों के स्वरूप में है, और वो तीन शक्तियां कौन सी है, एक है सोचने की शक्ति, दूसरी है समझने की शक्ति, और तीसरी है कर्म करने की शक्ति, जिसको MIS कहते हैं, मन बुद्धि संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार। मन कई समझते हैं, मन तो प्राकृतिक है, हम कहते हैं मन प्राकृतिक नहीं है, मन आत्मा की सोचने की शक्ति है, मन सूक्ष्म है, मन का स्थान मस्तिष्क में कोई न्यूरोसर्जन नहीं बता सकेगा मन कहाँ है शरीर ब्रेन के अंदर। ब्रेन की चीज नहीं है ये, आत्मा की चीज है। इसलिए हम मैटर के साथ माइंड को कभी नहीं समान समझे। मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, माइंड इज अबव मैटर। मैटर को भी वश में करने वाला माइंड है, न कि माइंड मैटर के वश में आ जाए। पर माइंड या मन के ऊपर बुद्धि है, इसीलिए कहा सोच समझ कर कर्म करो। तो मन की परिभाषा क्या है, ये आत्मा के सोचने की शक्ति, थॉट एनर्जी है। ये एनर्जी जैसे ये फिजिकल एनर्जीज है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन एनर्जीज की वेवलेंथ होती है, इनकी स्पीड होती है, ये सब कुछ होता है जो हम साइंस में पढ़ते हैं। और सबसे फास्ट कहेंगे स्पीड अगर है किसी भी एनर्जी की, फिजिकल एनर्जी की, उसमें सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की। और लाइट एनर्जी के लिए कहते हैं कि जो इसकी लाइट जब सूरज से निकल के धरती तक आती है, तो सूरज से निकली वो प्रकाश की किरण और धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जिसके आधार से सूरज कितना दूर है धरती से, वो मेजरमेंट्स आज ये सब करते हैं, साइंस विज्ञान मेजर करते हैं। तो अब सूरज की किरण यहां तक पहुंची 8 मिनट लगे, पर मन से आप सूरज तक पहुंचना चाहो तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर मन से सूरज में पहुंच जाओ तो कितनी देर लगी, तो मन की स्पीड कितनी है मेजर कर सकते हैं। चलो ये तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट में चले जाओ, एक सेकेंड में 20 साल पहले की घटना याद आ गई, कितनी देर लगी। तो ये फिजिकल चीज नहीं है, पर मन आत्मा और शरीर को मिलाता है, लाइक जैसे एक ब्रिज होती है ना, क्योंकि शरीर का असर आत्मा पर पड़ेगा मन के द्वारा, आत्मा का असर शरीर पर पड़ेगा मन के द्वारा, वो ब्रिज का काम करती है। इसीलिए तन का मन, मन का तन, ये मिला देते हैं। तो कई लोगों ने मन को प्राकृतिक समझ लिया, हम जो भोजन खाते हैं उसका असर आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। फिर मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, बहुत टेंशन में है उसका असर बॉडी पर पड़ेगा, वही कई रोग आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज है, 80% डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज इन द बॉडी, इसलिए इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं, मन का तन पर प्रभाव। तो मन के ऊपर बुद्धि है, अगर बुद्धि द्वारा मन को हमने वश कर दिया तो तन के कई रोगों से हम मुक्त हो सकते हो, आएंगे ही नहीं रोग। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि क्या है, तो मन की और बुद्धि के का अंतर क्या है, मन तरंगे हैं, वो तरंगे काम करती है, वाइब्रेशंस है, ये थॉट एनर्जी है। आज पोल्यूशन की हम बात करते हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट पोल्यूशन इज थॉट पोल्यूशन। आप किसी स्थान पर जा, आप कहेंगे कितनी शांति है, क्यों शांति, क्योंकि जहाँ की जो थॉट्स है ना लोगों के, ये बहुत ही शांति के थॉट्स है, तो आपको शांति अनुभव होगी। और किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ बहुत लगता है वेरी हेवी एटमोसफियर, क्योंकि लोगों के जो विचार है वो बहुत हेवी है वहां, तो थॉट्स के आधार पर, संकल्पों के आधार पर एटमोसफियर क्रिएट होता है। पर थॉट्स तो कई प्रकार के आएंगे, इतने मन में संकल्प आते हैं, किसी ने उसके स्टैटिस्टिक्स निकाले कि 1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं। अगर 1 मिनट के लिए आपको कहा जाए कि आप प्लीज साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस, आप 1 मिनट साइलेंस में खड़े तो होंगे, लेकिन वो शरीर तो स्थिर है पर मन के संकल्प। तो किसी ने इसके स्टैटिस्टिक्स निकाले कि 1 मिनट में कम से कम 25-30 विचार तो आते ही है, नॉर्मल माइंड है, 1 मिनट मौन में रहो ये कहा, केवल शांति में रहो, और वो 25-30 विचार आए, माना 2 सेकंड में एक विचार तो आएगा ही, और जब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो दो विचार एक सेकंड में है ना, या वर्स देन दैट, क्यों 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 हैमरिंग करते अपने दिमाग को। तो ये क्या है, मन जो है वो माई थॉट एनर्जी, पर सारे थॉट्स तो आप कर्मों में नहीं लाते हो ना, उनको फिल्टर करते हो, कौन से थॉट को, कौन से संकल्प को वाणी में लाना है। वाणी में सब तो विचार नहीं लाएंगे ना, कुछ अंदर ही दबा देंगे, फिर उन वाणी से भी थोड़े होंगे शब्द जो आप कर्म में लाएंगे, उनकी स्पीड उनसे कम है। संकल्पों की स्पीड सबसे तेज, वाणी की स्पीड उससे कम, कर्मों की स्पीड उससे कम। तो मन का काम है सोचना, पर बुद्धि उसका निर्णय करती, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, या आत्मा की शक्ति है, इनर कॉन्शियंस कहते हैं। कहते मेरा मन नहीं मानता, अंदर में मन खाता है, माना बुद्धि मन को रोक रही है, ये गलत है, ये मत करो, ये मत सोचो, ऐसे। ये अंतरात्मा की आवाज है बुद्धि, तो उसकी तुलना किससे की, एक तराजू से की है। जैसे तराजू निर्णय देता है किस बात का, वजन का, तो बुद्धि मूल्यों को वजन देती है, अंतरात्मा की आवाज मूल्यों को वजन देती है। और फिर शरीर से आत्मा जो कर्म करती है वो आत्मा में ही फिर निहित हो जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जैसे पहले जमाने में रिकॉर्ड होते थे, आजकल सीडीज है, उसमें आवाज भरा हुआ है, उसमें दृश्य भरे हुए हैं, डीवीडी या एसीडी या जो भी है, तो वो आवाज भरा हुआ होता है या दृश्य भरा है, वो हम प्लेयर पर रखते वो दिखाई देता है। तो आत्मा जो कर्म करती है वो संस्कार में भरता जाता है, और वो संस्कार फिर प्ले होते हैं कर्म द्वारा, शरीर के द्वारा। तो शरीर जैसे उसका प्लेयर है, शरीर भी जरूरी है। एक कलाकार में के अंदर बहुत अच्छी कला है, गायन कला, नृत्य कला है, लेकिन अगर वाद्य नहीं है, अगर स्टेज नहीं है, तो वो कहाँ अपनी कला प्रदर्शित करे। तो ये संसार एक कला, आत्मा की, आत्मा भी एक कलाकार है, वो कलाकार आत्मा अपने कर्म की कला प्रदर्शित करने के लिए संसार में आती है। अब उस हिसाब से अगर हम समझे खुद को, तो आत्मा क्या चीज है, आत्मा वही है जो मन के द्वारा सोचती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, कल्पना करती है, आइडियाज बनाती है, फिर उसके बाद उसको इवैल्यूएट करती है, उसको रीजनिंग देती है, ये बुद्धि करती है, सब आत्मा की शक्ति है, फिर उसको समझती है, फिर उसकी आदतें बनती है, वो सब आत्मा के साथ ही नहीं थे, ये सब सूक्ष्म चीजें। इसलिए व्हाट, हु आर यू, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, व्हाट यू डू, व्हाट यू वेयर, ये सब स्थूल चीजें, यू आर डूइंग पार्ट, बट यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू फील, यू आर व्हाट यू एक्सपीरियंस, यू आर व्हाट योर आइडियाज आर, या इमेजिनेशन आर, ये आप हैं सचमुच। वो अपने अंतर को पहचान, बाहर चाहे कैसा भी रूप हो। फिर आत्मा के अंदर जो संस्कार भरते वो ही फिर और फिर मन में आएंगे, सो दिस बिकम लाइक अ साइकिल। अब जो साइकिल है एक विशेष साइकिल बन गया है, क्योंकि संस्कार हमारे नेगेटिव हो गए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऐसे भरे पड़े, तो मन वही सोचता है, वैसा ही सोचता है। तो अभी इस साइकिल को तोड़ना है, तो मन बुद्धि को चलाए नहीं, इंद्रियां मन को चलाए नहीं, अभी जो स्थिति है इंद्रियां क्योंकि संस्कारों के वश हो गए, तो इंद्रियां मन को चलाती, मन बुद्धि को चलाती, फिर हम बुद्धि जो है वो अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है मन, फिर गलत कर्म हो जाते हैं। अब मेडिटेशन जैसे करते हैं तो बुद्धि अंतरात्मा की आवाज मन को संकेत देती है, हे मन क्या सोचो, फिर मन इंद्रियों को वश में रखता है क्या कर्म करना है, और फिर जो कर्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। अब ये जो बात है, जब हम ये बातें कहते क्या प्रूफ है आपके पास कि आत्मा है, ये शरीर ही सब कुछ है, ब्रेन ही सब कुछ है, ये शरीर ये सब कुछ है, हम कहते देखिए विज्ञान इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि विज्ञान में इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते आत्मा के बारे में, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसका विज्ञान भी नहीं बता पाता है किसका कारण क्या है। जैसे छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, पूर्व जन्म की बातें, और सचमुच उसके आधार पर अगर उसका स्क्रूटनी करते हैं तो बिल्कुल वो सही निकलता। आजकल तो बहुत इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, कैसे बता पाया पूर्व जन्म की बात, वो तो शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो कहां से रिकलेक्शन आया। ब्रेन तो इस जन्म का नया है, ये तो पूर्व जन्म का ब्रेन तो आया नहीं है, तो वो याददाश्त शक्ति किसमें है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति मर चुका, खत्म, ऑपरेशन करते करते हार्ट बीट बंद, मर गया, बिल्कुल पथरा गया, एकदम डेड हो गया, और डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और अचानक थोड़ी देर के बाद वो जिंदा हो जाता है और कहता है मैं ऊपर से अपने बॉडी को देख रहा था, ऊपर से कैसे देख रहा था, और क्या बातें कर रहे थे डॉक्टर्स वो भी बताता है कि आप लोग ये बातें कर रहे थे, और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं तो देख रहा हूं, और ये कहते हैं तो मर गया है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कई बार इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। वो लगता है जैसे मैं उड़ता गया और एक टनल से, गहरे सुरंग से गया और अंधेरा था, फिर एक प्रकाश आया, फिर प्रकाश ने मुझे बहुत प्यार किया, पता नहीं क्या क्या अनुभव सुनाते, क्योंकि मर चुका था और जिंदा होकर के अपना अनुभव सुना रहा है। तो किसने अनुभव किया, ये आत्मा की शक्ति है। और आजकल विज्ञान के अंदर, हेल्थ में, मेडिकल साइंस में एक प्रयोग हो रहा है जिसको हिप्नोटिक रिग्रेशन कहते हैं। कोई बीमारी है नहीं शरीर को, लेकिन वो समझता मैं बीमार हूं, अपने आप को बहुत ही थका हुआ, उदास, चिंतित, कुछ भी नहीं है उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन ये दर्द है, परेशानी है। फिर उनको पूर्व जन्मों में ले जाते हैं और पूर्व जन्मों में उनको वो बताता है अपना, जैसे सम्मोहित करते और उसमें बताता है कि वो उसको क्या समस्या थी, क्या बात थी, और फिर उसको डिलीट कर दिया, मना खत्म कर दिया, और फिर वापस आया तो सब कुछ एकदम बदल गया, एकदम। तो कैसे हो गया, ये पूर्व जन्मों में आत्मा को ले गए। कई भविष्य की बातें बताते, भविष्य तो अभी तक इस ब्रेन में तो आया नहीं, वो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो भविष्य के इंट्यूशंस, ये होने वाला है, कैसे बताते हैं, पता ही नहीं ये कैसे है, वो तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये आत्मा में पहले से निहित है ये, इसलिए हिप्नोटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, आगे का भी जो अभी तक हुआ ही नहीं है। अब इसको ही हम आधार बना सकते हैं अगर समझना है कि आत्मा क्या चीज है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही पूरा रिकॉर्ड है जो कभी घिसता नहीं। अब उस रिकॉर्ड को अगर हमने समझा, अब ये शरीर उसका माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा आत्मा कर्म करती है, पर शरीर में कहां है, तो शरीर के अंदर आत्मा का स्थान वही है जहां उसका कंट्रोल रूम है। सारे बॉडी का कंट्रोल रूम कहां है, कई समझते हृदय में है, हृदय तो एक पंप है जो केवल खून ही पंप करता है, बस हृदय कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कंट्रोल रूम मस्तिष्क है। ये आंखें देख रही है पर ये आंखें को या नहीं देख रही है, ये तो मस्तिष्क में उसकी पिक्चर आती है तब देख सकते, पर उसमें भी देखने वाला कौन। पेट में भूख लगी है पर पेट को नहीं पता कि मुझे भूख लगी है, ये मस्तिष्क में उसकी सेंसेशन पहुंचता है, पर अनुभव जो करने वाली चीज है वो तो आत्मा है। अब ये जब हमने समझा तो महसूस होता है कि मैं आत्मा कहां हूं इस शरीर में, तो यहां भ्रिकुटी के मध्य चमकता है का जब सितारा, दो नैनों के बीच में, बहुओं के बीच का ये जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां स्त्रियां तिलक लगाती है, ये आत्मा का स्थान है। या तीसरा नेत्र दिखाते हैं, ये आत्मा का नेत्र खुलता है। अब ये जब आत्मा को हमने पहचाना तो महसूस होता है कि मैं आत्मा इस मस्तिष्क के द्वारा कर्म करती हूं, आंखों द्वारा देख रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूं। अब मैं चाहूं तो न्यारी हो जाऊं, ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलानी है, बंद कर दे, मालिक है ना, उसके हाथ में है, साइड करना, रिवर्स करना है, आगे करना है, पीछे जो कुछ है वो मालिक बन के कर सकता है। तो मैं आत्मा शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये संकल्प आत्मा ने किया, और अपनी सीट पर सेट हो जाऊं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा या भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक। अब ये मालिक बन करके मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करूं। अभी क्या कर्म करूं? मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानूं। ओरिजिनल स्वरूप मेरा क्या है? मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में वही हूं जो मैं जीवन में चाहती हूं। जैसे शरीर क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा, मकान, हम कहेंगे ना, ये शरीर को चाहिए। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, हवा चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, तो ये चीजें शरीर के लिए है जिनसे वो चीज बनी हुई है। पर आत्मा के लिए क्या कहेंगे? आत्मा को क्या चाहिए? किसी को रोटी दो पर गाली दे के रोटी दो, गालियां दो और रोटी साथ में दो, रोटी खाएगा आपकी? क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि आत्मा को प्यार नहीं मिला। प्यार से रोटी दो, प्यार से रोटी देंगे तो दो की जगह चार खा लेगा, है ना? कितना प्यार से दे रहे हैं ऐसे बोलेंगे ना। और गाली से देंगे तो आपने कितना भी बनाया हो नहीं चाहिए। भूखा रहना पसंद है पर ये अपमान सहन करना पसंद नहीं है। तो अपमान किसको लगा? शरीर को तो लगा, वो तो प्रकृति की चीज है, वो आत्मा को लगा, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो प्रेम स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। ये कोर वैल्यूज जो आत्मा के हैं, ये आत्मा में ही निहित है, उनको ठेस पहुंचती है, इसीलिए आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती है अगर उसको ठेस पहुंची तो। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। बाहर से जो आता है वो इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है, पर जब ज्ञान बन गया, वो अंदर की चीज बन गई, वो बाहर आएगी, वो शक्ति है। जैसे भोजन खाया, पर भोजन ही सब कुछ नहीं है, वो शक्ति बनना चाहिए शरीर में, वो ब्लड में जाए तब शक्ति बने, वो अंदर से बाहर आएगा, वो शक्ति है। भोजन तो स्थूल चीज है। तो ज्ञान ये शक्ति है जो अंतर आत्मा में निहित है। शांति एक शक्ति है जो आत्मा में निहित है। और ये कैसे अनुभव होगी? चिंतन से अनुभव होगी। इसीलिए कहते एज यू थिंक सो यू बिकम। इफ यू थिंक यू आर पीसलेस, नो वन इन द वर्ल्ड कैन मेक यू पीसफुल। एंड इफ यू थिंक यू आर अ पीसफुल सोल, एक आत्मा हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, जिसको ओम शांति कहा, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे अशांत नहीं कर सकती है। अब इसको हमें समझना है कि मैं आत्मा ये सात मूल गुणों का समूह स्वरूप हूं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब आत्मा के लक्षण हैं। और ये मेरे अंदर ही निहित है, ये कोर वैल्यूज है। जैसे संगीत में सात सुर आते हैं, सा रे ग म प द नी, बस ये सात सुर का ही संगीत है। सात दिन का जीवन है, सात रंग होते हैं, बाकी सब उसकी मिक्सचर है उसका। तो जीवन भी सात दिन का, आठवां दिन आता नहीं। तो जो कोर वैल्यूज है, जो अनादि मूल्य है आत्मा के, ये सात मूल्य है। इसीलिए कहते आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर से प्राप्त करो, ज्ञान चाहिए अंदर से लो, क्योंकि ये आत्मा के ही मूल गुण है। और ये चिंतन, फूड फॉर थॉट, जो मन बुद्धि को मिला, ये आत्मा का भोजन बन जाता है, और वो भोजन आत्मा को शक्ति का अनुभव कराता है। और जैसे मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरी शांति कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति का अर्थ क्या है? यहां आप सुबह से लेकर रात्रि तक ये ओम शांति शब्द सुनेंगे। अ उम वही मैं कौन हूं? वही मैं हूं जिसका स्वभाव शांति है। ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। और जैसे मैंने अपने आप को शांति अनुभव किया, तो फिर आता है कि इस संसार में तो मैं मेहमान हूं, मेरा असली घर कहाँ है? ये संसार तो मेरा घर नहीं है, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। कई लोग दुखी होके भगवान को बुलाते हैं, पुकारते, हे भगवान बस उठा लो इस संसार से, मुझे जीना नहीं है, उठा लो मुझे, बुला लो अपने पास वापस, इस दुनिया में हमें जीना ही नहीं है। तो कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ है वो स्थान? इस संसार में तो नहीं होगा ना। तो ये पांच तत्वों से पार एक छठा महतत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, वो सब इस एक मांडवे के हैं, जिसको हम कहेंगे ये प्रकृति, ये पंच महाभूत, ये साकारी दुनिया है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जिसके लिए गीता में आता है ये संसार एक उल्टे झाड़ की तरह है। ऊर्ध्व मूल है, इसका जो मूल है वो ऊपर है, ऊर्ध्व, और अध शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे है। इसका मतलब हमारा जो असली घर है वो तो पांच तत्वों से पार है। ये संसार तो एक रंगमंच है, रंगमंच पे एक्टर का घर थोड़ी होता है, घर तो दूसरा होता है। एक्टिंग पूरी की, घर जाना है वापस अपने। तो आत्माएं कहां से आई है? जो अनादि अविनाशी आत्माएं हैं, ये प्रकृति पंच तत्वों का शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा, पंच तत्वों को वापस लौटाना है जहां से आया है शरीर। हर एक चीज अपने सोर्स से आएगी, सोर्स से आती है, सोर्स के पास जाएगी। हम पानी गिराते हैं तो पानी नीचे की ओर क्यों जाता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पानी का सोर्स सागर है। हम दिया सलाई जलाते हैं तो दिया ऊपर की ओर जाता, नीचे की ओर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका सोर्स सूर्य है ऊपर, तो सूर्य जो उसका सोर्स है वहीं पहुंचेगा। तो आत्मा का सोर्स कौन है? कौन है? परमात्मा। तो अर्थात आत्माएं जो है उस परमधाम से आई है, परमात्मा से आई है। अब परमात्मा के विषय में आपको शाम को बताएंगे। तो आत्माओं का धाम है, और आत्मा जब दुखी होती है तब उस घर को याद करती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं दूर चला गया है तो उसको आराम नहीं मिलता, खाना ठीक नहीं मिलता, सोना ठीक नहीं मिलता, तो घर को बहुत याद करता है, मैं जल्द कब घर पहुंचूं। तो आत्मा का जो असली घर है, जिसके अनेक नाम हैं, कई हर धर्म में अलग अलग नामों से वो याद किया जाता है घर, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, या अखंड ज्योति का ब्रह्म महतत्व है, वो सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है, स्वयं प्रकाशित धाम, जिसको योगियों ने साक्षात्कार में अनुभव किया है, वो आत्माओं का धाम है। तो जब हम अपने आप को अनुभव करते, आत्मा का अनुभव करते हैं, उस धाम का अनुभव करते हैं। जब किसी को परिचय जिससे पूछा जाता है तो उसकी एड्रेस भी पूछी जाती है, और एड्रेस में अधिकतर देखा जाता है दो एड्रेसेस पूछी जाती है, एक है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी होती है परमानेंट एड्रेस, है ना? तो प्रेजेंट एड्रेस तो ये शरीर है जहां मैं अभी इस समय हूं, पर परमानेंट एड्रेस है जहां से मैं आया हूं। तो पांच तत्वों से पार क्या है इस एड्रेस, क्या है इस घर की, मेरे घर की सच्ची एड्रेस क्या है? पांच तत्वों से पार, जैसे एड्रेस में क्या होता है, अपोजिट सो एंड सो, नियर सो एंड सो, है ना, होता है ना, या बिहाइंड सो एंड सो जो फेमस स्थान होता है उसके साथ तुलना करते हैं ना, बिहाइंड सो एंड सो, तो अपोजिट या अबव भी सो एंड सो। तो इसीलिए पांच तत्वों से पार जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता वो मेरा परम धाम है, ये आत्मा का धाम है। सूर्य चांद सितारों का प्रकाश इस पंच महाभूतों में ही है, पर उससे भी पार एक महतत्व है जिसको ब्रह्म के नाम से याद हम करते हैं, वो आत्माओं का धाम है, उसका साक्षात्कार होता है। योगी लोग, सन्यासी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग उस धाम को याद करते हैं। अब उस धाम में मेरा निवास है, मैं एक आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा उस धाम में विराजमान हूं, ये चिंतन पहले करना होगा। दुखी होके भगवान को मत कहो हे भगवान मुझे उठा लो इस दुनिया से, नहीं, जरूरत नहीं, मन से चले जाओ, आपका ही घर है। अपने घर में जाने के लिए किसको कहना पड़ता है क्या कि मुझे निमंत्रण दो, मुझे बुलाओ, आपका तो अधिकार है उस घर में। कई कहते हैं उस घर को चलो आपने कह तो दिया लेकिन वो घर हमने देखा नहीं है। हम कहते कैसे नहीं देखा, उसी घर से तो आए हो आप। एक बच्चा घर को भूल गया, रास्ता भटक गया तो पुकारेगा, चिल्लाएगा, पर जिसको अपने घर का रास्ता पता है वो थोड़ी भटकेगा, वो तो पहुंच जाएगा। हम क्यों भटक गए, क्योंकि उस घर को भूल गए, तो खुद को भी भूल गए, घर को भी भूल गए, और इस संसार में आए क्यों ये भी भूल गए। ये भूल भुलैया का संसार बन गया, भूल भुलैया। किसी को आप, बच्चे को आप काम दो, बेटा ये मैं पैसा देता हूं तुम ये चीज खरीद के लाओ, अब गया तो परंतु क्या लाना ये भूल ही गया, और पैसा भी गुम कर दिया, लाना क्या यही भूल गया, और कहां जाना है घर भी भूल गया, तो क्या होगा उसका हाल, क्या होगा। तो इस संसार में हम क्यों आए, क्या था जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या यही पता नहीं। कई समय से खाओ पियो मौज करो यही जीवन का लक्ष्य, कल तो पता ही नहीं क्या होगा, इसलिए अभी जी लो, खाओ पियो, लिव टू योर एक्सट्रीम, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है। अगर खाओ पियो मौज करो माना खाने के लिए जीना, ऐसे खाना इसीलिए जीना है नहीं, जीना है इसीलिए भोजन चाहिए शरीर को, पर जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दूसरा कोई, किसी ने कह दिया जीवन का लक्ष्य है बस खूब संग्रह करो, जमाखोरी, ये भ्रष्टाचार क्या है, जमाखोरी तो है ये सब क्या, इसलिए हमें संसार में आए हैं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, आज प्राण पखेरु उड़ गया, आत्म पंछी उड़ गया, सब यहीं रह जाना है, इसलिए थोड़ी आए हैं संसार में, किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं, सोचा है कभी किस लिए आए। तीन लक्ष्य लेकर के इस संसार में आए हैं, और हमें ये देखना है ये तीनों लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं, तब हमारा यहां इस संसार में आना सार्थक होगा। नहीं तो जैसे कहा जाता है ना, कबीर का फिर दोहा याद आता है, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जग हंसा, पर ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। पर वो कब होगा, वो कब होगा, जब जीवन का लक्ष्य पूरा होगा, हम खुशी खुशी जाएंगे और लोग रोएंगे, ऑपोजिट जन्म का बिल्कुल विरुद्ध रूप कि ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा, ये इनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा, क्योंकि इतनी सुंदर यादगार हम छोड़ के जा रहे हैं, लेके तो नहीं जाएंगे संसार का कुछ भी। तो वो कौन सा लक्ष्य होगा इस संसार में आने का, तीन लक्ष्य। एक लक्ष्य आत्मा एक सुंदर एक्टर के रूप में है, इतनी बढ़िया एक्टिंग इस संसार में करे जो हर एक कहे वंस मोर, बहुत अच्छी एक्टिंग होती है तो ऑडियंस क्या कहता है, वंस मोर इतना अच्छा लगा। ये नहीं है कि चलो जान छूटी, भला टली गया, अच्छा हुआ। कोई ये तो ना मरते ही नहीं है, बिस्तर पर पड़े ही हैं, तो दुखी हो जाते उनको संभालने वाले। ना मरता है ना मंजा छोड़ता है, ऐसे बोलते हैं। या तो मर जाओ या तो पलंग छोड़ो ना, काम करो, पढ़ाई है, ऐसा क्या जीवन। तो इसीलिए इस संसार में हम क्यों आए, वंस मोर कोई कहे कि इसका ऐसा जीवन इतना आदर्श था, तो इसकी जगह कोई भर नहीं सकेगा, यही कर सकता था। तो ऐसे मेरी सुंदर एक्टिंग हो इस संसार में, जो भी मुझे कर्तव्य मिला है, मैं सबसे अच्छे से अच्छा बजाऊं, जी जान लगाकर बजाऊं। और दूसरा मेरा लक्ष्य क्या था, आत्मा के अंदर जो गुण निहित है उन गुणों को मैं व्यक्त करूं, क्योंकि कला है, कलाकार हूं ना। तो कलाकार क्या करेगा, उसके अंदर जो कला है वो गुण के रूप में अपनी कला में प्रदर्शित करेगा, उससे कुछ शिक्षा मिले समाज को, कुछ प्राप्ति हो समाज को। केवल एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेन भी एक प्राप्ति है, क्यों नहीं, कुछ शिक्षा भी एक प्राप्ति है, कुछ सीख मिले, कुछ परिवर्तन आए, कुछ आगे बढ़े। तो हम क्यों आए इस संसार में, आत्मा के अंदर जो गुण निहित है वो गुण कर्म में व्यक्त करने के लिए आए। एक तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करने आए, और उस एक्टिंग में आत्मा के गुणों को व्यक्त करने के लिए दुनिया में आए। और तीसरा लक्ष्य था बहुत ऊंचा, उनसे भी आदर्श, उस परमात्मा का नाम रोशन करने के लिए आए, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो रचना रचयिता को प्रदर्शित करे। आज एक अच्छी कलाकृति है, तो कलाकृति को देखते हुए किसने ये कलाकृति बनाई उसको याद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम रचना का रचयिता कौन, उसका नाम हम रोशन कर सके, इस संसार में इसलिए आए। अब हम पूछे अपने आप से, जीवन का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहते नहीं कर रहे हैं। ऐसे है क्या, तो कलाकार हैं आप सभी, तो जीवन का लक्ष्य भी हमें पूर्ण करना है, इस लक्ष्य से हम कर्म करें। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। राजयोग का प्रथम कदम है आत्मा की अनुभूति। तो मैं आत्मा क्या हूं, तो आत्मा का परिचय हम सबको मिला। आत्मा क्या है, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। कहां विराजमान है, या भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा। आत्मा का असली घर कहां है, पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व। आत्मा के क्या गुण है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। अब इनका चिंतन करना ये आत्मा के अनुभूति में ये कदम है, तीन कदम है आत्म अनुभूति के लिए, तीन कदम। ये राजयोग का पहला स्टेज है, पहली अवस्था है आत्म अनुभूति। तो तीन कदम है इसमें। पहला कदम है, इस शरीर में मैं आत्मा कहां हूं, तो कहां हूं, ये भ्रकुटी के बीच। तो जैसे अपना थॉट्स, अपने विचारों को यहां फोकस कर दें कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रकुटी के मध्य विराजमान चमकता हुआ सितारा, यहां चेतन सत्ता विराजमान, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मैं आत्मा इन आंखों से देख रहा हूं, आत्मा इस मुख से बोल रहा हूं, नहीं बोलना है, नहीं देखना है, न्यारा हो जाऊं। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, हाथ पैर सिर, हम ऐसे तो नहीं कर सकेंगे कि इनको अंदर ले लें स्केलेटन में, वो तो शरीर तो बाहर ही रहेगा, हाथ पैर तो बाहर ही रहेंगे, लेकिन मन से हम विड्रॉ कर लेते हैं कि मैं यहां विराजमान हूं। फिर दूसरा कदम, मैं कैसी आत्मा हूं, तो अपने अंदर में चिंतन करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं कौन हूँ ये अनुभूति करनी है। ये मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, गायक हूँ, ये सब बाहर की चीजें हैं, ये कला है, टैलेंट्स है, जो भी आपकी अभिव्यक्ति आप करते हैं ये सब फिजिकल है, पर मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ जो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा असली धाम कहाँ है? मैं आत्मा एक पंछी की तरह हूँ, एक सेकंड में उड़ सकती हूँ, मन बुद्धि के पंख लगा करके मैं आत्मा उड़ सकती हूँ पांच तत्वों से पार, उस बेहद धाम में, उस ज्योति के धाम में उड़ जाऊं और ऐसे महसूस करूं कि मैं एक ज्योति स्वरूप सितारा, चमकता हुआ सितारा आत्मा, एक बेहद लाल सुनहरे लाल प्रकाश के महतत्व में विराजमान हूं। इसलिए हम लोग यहाँ लाल प्रकाश जलाते हैं, ये सुनहरा लाल प्रकाश जलाते ताकि एक महसूसता हो कि मैं आत्मा उस ज्योति के महतत्व में विराजमान हूं और अपने सारे जो भी बॉडी से संबंधित बातें उनसे डिटैच हो जाऊं। तो जो अगर अपने मन में कुछ नेगेटिव बातें भी अपने बारे में या औरों के बारे में किसके बारे में भी, एक सेकेंड में न्यारा हो जाऊं, कोई कई आवाजें हैं उनसे भी न्यारा हो जाऊं, अपने यहां भृकुटि के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं और इस बेहद की दुनिया में विराजमान होकर के महसूस करूं कि मैं एक चमकता हुआ सितारा उस परम धाम में चारों ओर प्रकाश फैला रहा हूं। बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे, इसका अभी हम अभ्यास करते हैं। सीधा बैठेंगे, अगर आंखें खुली रख सको तो बहुत अच्छा, अपने आप बंद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके बैठना भी हठ योग है, नेचुरली खुली रहे। पर मन की आंख उस परम धाम को देखे, मन की आंख परम धाम में खुद को देखे, क्योंकि ज्ञान का मिरर, एक आईना हमें मिल गया, खुद को पहचानने का आईना मिल गया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, ये भी पता चल गया। अब इसका अनुभव हमें करना है, तो स्वाभाविक रूप से बैठे, नेचुरल बैठे, हट करके बैठने की जरूरत नहीं, नेचुरल, टांगे नीचे, सिर हाथ में कोई चीज हो तो रख दीजिए, बिकम फ्री, कुछ भी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, हल्का, भले अपनी उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर सकते सीधा बैठ करके, और अंतर में खुशी लाएं, एक खुशी, अपने आप को पहचानने की खुशी कि मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैं कौन हूं। जो आज तक हम दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त करते थे, चाहे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में, वो दोनों मैं नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं जो शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहूंगी, एक अजर अमर अविनाशी सत्ता, एक दिव्य ज्योति, प्रकाश का पुंज, चमकता हुआ सितारा। ये शरीर तो मेरा एक साधन है, बुद्धि मन को चिंतन देती रहे, मैं कौन हूं? ये शरीर मेरा साधन है, इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली शक्ति, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, मेरा स्थान इस शरीर में दो नेत्रों के बीच भ्रकुटी के मध्य है। अपने विचारों को मस्तिष्क पर एकाग्र कर खुद को वहीं देखें। महसूस करें स्वयं को कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, यह शरीर मेरा एक वस्त्र है, जिसे धारण कर मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करती हूं। अब इस रंगमंच से भी मन बुद्धि को हटाकर आत्मा उड़ान भरे अपने धाम की ओर। पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी दूर, अखंड ज्योति के महत्त्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा, सुनहरे लाल प्रकाश की इस दुनिया में चमक रहा हूं। अपने मूल स्वरूप में अपने अनादि स्थिति में मैं आत्मा अति शुद्ध हूं। पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति मुझ आत्मा का निजी स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का स्वलक्षण है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में निहित है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के धाम में विराजमान हूं। जहां चारों ओर शांति ही शांति है। कितनी निर्संकल्पता है, मैं आत्मा, अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर रही हूं। कितना हल्का पल, कितना न्यारापन, अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, मैं आनंद स्वरूप हूं, अब इन्हीं गुणों को स्वयं में भरपूर कर वापिस लौटे। फिर से अपने शरीर में, साकारी दुनिया में और आत्मा के मूल गुणों को शरीर के द्वारा फिर से व्यक्त करें। यही आत्म अनुभूति कर्म द्वारा भी करें और हर कर्म में शांति प्रेम व्यक्त करें। तो आपका हर कर्म कुशल बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा। यही राजयोग का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।